स्वामी जी का उम्र 87 साल का है, 87 years old, और स्वामी जी का हेडक्वार्टर है मथुरा वृंदावन, और आज गौदिया सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, और स्वामी जी दुनिया के कोने कोने में अपनी संस्कार, अपनी संस्कृति, वैदिक धर्म और कृष्ण भगवान के भक्त की प्रचार करते आ रहे हैं। और आज देखिए, ऐसा हम लोग का सौभाग्य है कि स्वामी जी हमारे न्यूजीलैंड जा रहे हैं, उसके बाद फिजी जाएंगे, और सिंगापुर एक ऐसा सुंदर देश है कि रास्ते में पड़ रहा है, और इस जगह हम लोग को महाराज जी का दर्शन मिला है, और सौभाग्य है कि तुम सब इनकी मधुरवाणी से हम लोग सुनेंगे और आप लोग से आनंद लेंगे। वैसे स्वामी जी का तो बायोडेटा बहुत डिटेल है, लेकिन एक दो बात मैं कहूँगा कि 2002 में यूनाइटेड किंगडम हिंदू टेम्पल सोसाइटी की जगह से स्वामी जी का ऑनर किए गए हैं, इनका स्वागत और बहुत भाव किया गया था। उसके बाद 2003 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट ने इनको ऑफिशियली गुडविल एम्बेसडर का टाइटल दिया है, और ऑनररी सिटीजन ऑफ यूएसए बनाया है। तो ऐसे महान पुरुष आज हम लोग के बीच आए हैं, और आई हम लोग का सौभाग्य है कि आपका दर्शन मिल रहा है, और मैं अपने मंदिर के प्रेसिडेंट श्री ईश्वरदास शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि फूलमाला से स्वामी जी का स्वागत करें। और जो आज सबसे भाग्यशाली है श्री राम आश्रय मिश्र जी, वो आज इस मंदिर के जजमान है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ आए और स्वामी जी का फूलमाला से स्वागत करें और आशीर्वाद। इसके बाद जो भी भगवत प्रेमी स्वामी जी का स्वागत करना चाहते हैं फूलमाला से, वो सामने आए लाइन से और स्वामी जी का स्वागत करें। अब इसके बाद आप लोग ध्यान से आराम से बैठकर जो प्रसाद मार्केट में नहीं मिलती है, जो प्रेम कहीं से खरीदा नहीं जा सकता है, जो भाव किसी मार्केट में नहीं मिलेगा, वह सब ध्यान से प्रेम से हमारे स्वामी जी के मुखार रूप से सुनिए और उसका आनंद लीजिए। स्वामी जी
अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय तवैवास्मि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चरणं दिके मैं सर्वप्रथम अपने परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणति की ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मंदिर कमेटी के सदस्यगण, श्रोतागण, वैष्णवगण सबको यथा युक्त भाव से अभिनंदन करता हूँ। विशेष करके मंदिर कमेटी के जो सदस्य लोग हैं, इसके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, सलाहकार और मंदिर के पुजारी इत्यादि, मैं सबका आभारी हूँ कि मेरे लिए इस सनातन धर्म के मंदिर में कुछ समय तक बोलने का अवकाश दिया। वैसे मैं कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन से आया हूं और सर्वत्र सनातन वैदिक धर्म का प्रचार करता हूं। विशेष करके कृष्ण लीलाओं का, और समय समय पर जरूरत होती है तो राम लीलाओं का भी वर्णन करता हूं और सारे विश्व में हजारों लाखों लोग हमारे इस सनातन धर्म को ग्रहण किए हैं, केवल भारतीय ही नहीं या प्रवासी नहीं, वहां के लोगों ने गोमांस मदिरा इत्यादि छोड़कर संपूर्ण रूप से वैष्णव बन करके चोटी रखते हैं, तिलक रखते बनाते हैं, गले में माला होती है, एकादशी इत्यादि व्रत करते हैं, जन्माष्टमी का, रामनवमी का व्रत करते हैं, शिव चतुर्दशी का व्रत करते हैं। तो मैं अभी बतलाया इन्होंने, मैं अभी न्यूजीलैंड जा रहा हूँ, वहां से फिर इत्यादि जाऊंगा, तो आज एक दिन का अवकाश मिला तो मैं कुछ कृष्ण लीलाओं के माध्यम से मनुष्य जीवन का कर्तव्य क्या है, हमारे देश के मनीषियों ने, ऋषि महर्षियों ने, या कृष्ण भगवान ने, या श्री रामचंद्र जी ने क्या क्या उपदेश हम लोगों को दिया है, इसके संबंध में कुछ मैं विचार करूंगा। अच्छा बोले दो तो
Just for my there are so many not Hindi speak, but I need this extra mic. Hare Krishna. There are some audience also, they don't know Hindi at all. So for their benefit, I try to have my level best to translate in English language. So the Gurudev at first, he has his senses. A lot of steps to his Gurudev. And he welcomed all temple committee, headed by president and secretary. Gurudev told, I have dated to them all, because they allowed me to speak in this temple. I remember as before also Gurudev came once, and he's 6 years before here, and he gives some discourses. So, as before, we had heard from introduction, who is going to New Zealand tomorrow. So, on the way, he has stopped over here to Singapore. So, we are so fortunate to listen something from Srila Gurudev, Lotus Leaf. Gurudev is telling that he has come from the abode of Sri Krishna Bhagavan in Vrindavan. Not only in India, all over the world, who is speaking about his first times, and when needed, who is speaking about Ramchandra's first times too. So, not only Indians and who is living non-resident Indian, not only for them, all over the world, who is always big teacher and wine, they give up all this nonsense thing, and they are adopting Indian Vedic culture, they are keeping secret, using Trikanti Mala in their name and Tilak, and they are doing bhajan. So Gurudev will describe today what is the duty and responsibility of human beings to Krishna's pastimes and what Lord Ramchandra advises us about that. Hare Krishna.
Keda Saktesu Gopesu Tadgavo Durcharina स्वयरंग चरंत्यो विवसु स्त्रीन लोभीन गौ कृष्ण एक ही साथ में मथुरा में देवकी के गर्भ से उत्पन्न हो और उधर जशोदा मैया के गर्भ से एक समय में ही जन्मे। इस चीज को अच्छी तरह से समझना। लोगों की धारणा है कि कृष्ण मथुरा में कारागार में देवकी के गर्भ से प्रकट हुए और वसुदेव जी उनको गोकुल में पहुंचा दिया और फिर नंद बाबा यशोदा ने पालन किया, किंतु शास्त्रकारों ने, टीकाकारों ने और स्वयं परीक्षित सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, दूसरे पुराणों में भी ऐसा लिखा गया है, जिस समय देवकी को कंस कारागार में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए उसी समय ठीक गोकुल में नंद बाबा की पत्नी यशोदा मैया के गर्भ से कृष्ण पैदा हुए और थोड़ी देर के बाद में एक कन्या हुई। कृष्ण स्वयं भगवान हैं, अचिंत शक्तिशाली हैं, वे दो ही क्या करोड़ों जगहों में एक साथ में जन्म ले सकते हैं। रास के समय में करोड़ों गोपियों के साथ में करोड़ों करोड़ों कृष्ण हो गए और उनके साथ में नित्य इत्यादि। द्वारका में भी 16,000 महिषियों के साथ में एक साथ 16,000 धारण करके विवाह किया और सब काम किया, इसलिए कृष्ण के लिए ऐसा संभव नहीं है। इसलिए वहां मथुरा के जेल खाने में कृष्ण का जन्म नहीं हुआ। शंख चक्र गदा पद्म लेकर सोने के आभूषण से अलंकृत होकर 16 वर्ष की नवजुवक की अवस्था में प्रकट हुए, जन्म नहीं लिया गर्भ से। क्योंकि गर्भ से जन्म लिया होता, नाड़ी छेदन होता, संस्कार होता, स्नान इत्यादि होता, ये सब वसुदेव जी को नहीं हुआ, देवकी को नहीं हुआ। और गोकुल में कृष्ण का यशोदा जी के गर्भ से जन्म हुआ, नाड़ी छेदन संस्कार हुआ, जन्म होने का सब संस्कार हुआ, और नंद बाबा ने हजारों गाय दान दी, तिल के पर्वत लुटाए, सोने के आभूषण इत्यादि दान दिया। वहां पर नंद महोत्सव हुआ, जन्म कृष्ण का इधर नहीं हुआ। इसलिए इस चीज को समझो, जो यशोदा जी के पुत्र है और आंशिक रूप में देवकी जी के पुत्र बचपन से ही अद्भुत अद्भुत लीलाओं को किया। 10,000 हाथियों के बल वाली पुतना को जो 20 स्तन में लगा करके गई और उनको मारने के लिए, तो बीस को तो चूसा ही, उसके प्राण को भी चूसा और माता जैसी धात्री गति उसको दी। कैसे दयालु, मारने के लिए भी कोई जाए तो लौटता नहीं है, मुक्ति तो दे ही देंगे। और धात्री के समान, माता के समान दूध पिलाने वाली धाती के समान उसको सदगति दे दिया। इसके बाद में अघासुर बकासुर इत्यादि राक्षसों को मारा, जिनको मारना सहज नहीं है। गिरिराज गोवर्धन को धारण किया, साधारण आदमी का काम नहीं है। इसलिए फल ही कुछ लोग कृष्ण को अवतार न माने, स्वयं भगवान, किंतु ऐसे अद्भुत काम कर्म करना दूसरों के लिए संभव नहीं। इस तरह से गर्मी के दिनों में एक समय कृष्ण लाखों गायों को साथ में लेकर, लाखों सखाओं को साथ में लेकर बंसी बजाते हुए एक वन से दूसरे वन में इस प्रकार से चलने लगे। गौवें उनके साथ में थी, उनको भी चराते हुए चलते वृंदावन में 12 वन 12 उपवन है, वो भांडीर वन एक कहलाता है। उस वन में गए, वहां पर एक वृक्ष था जो बहुत दूर तक फैला हुआ था, उसकी शाखाएं, उसके नीचे गायों को छोड़ दिया घास चरने के लिए, और सब सखा मिल करके परस्पर माताओं ने जो भेजा था कलेवा करने लगे। गायों का तो ऐसा स्वभाव होता है कि वो चाहती हैं आगे, खास देखने पर और आगे बढ़ जाती हैं और आगे बढ़ जाती है, सोचते हैं कि और भी हरी भरी घास होगी हम उसे खाएं। इसलिए वो बढ़ती बढ़ती घासों को खाने के लोभ से बहुत दूर चली गई, आंखों से उजल हो गई, और सखा लोग जो वहां थे देखा रे गाय कहां गई, गाय तो हमारा गोधन है, तो माता पिता तो हमें डांटेंगे मारेंगे। कृष्ण से कहा इधर गायें चलती चलती हुई क्या, बोलो। कुछ तमिल तेलुगु के लोग आए हैं उनके लिए भी थोड़ा सा।
हरे कृष्ण, सेम टाइम but so many people in the world, they thought that Krishna appeared in Mathura. After that, Vasudeva Maharaj took him to Gokul, and Mother Yashoda Devi and Baba Nanda, they nourish him, but it's not true at all. So, now question arises in our mind, how it is not possible and how it is not true. So, Sukadeva Goswami, extol himself. Namdastu Atmaja Utpanne, that Namda has gave son, Atmaja means son. And in so many Purans it is described vividly that Krishna is son of Mother Devi, Yashoda Devi and Nanda Baba, and partly son of Devaki Devi. Buddha is giving some arguments and is given by Sukadeva Goswami, Srimad Bhagavat, and our all commentators have explained this. So Krishna is saying Bhagavan. He may appear on why only two places. If he wants, by his inconceivable potency, he can appear anywhere, everywhere, in so many places. Just like Buddha has given an example, leaving Rajkani Sukadeva Mandal, there so many gopis over there, Krishna became as many gopis as many form. He was dancing each and every gopi separately. And when Krishna got married in Dwarka, there are 16,108 queens. Krishna at that time made 16,108 forms and got married. So if someone take birth, he must have a little small baby. And when Krishna appeared in the jail of council, at that time Krishna was about 16 years aged, with so many golden ornaments, long, long curly hair, etc. But have you seen any time in this world that baby come from mother wombs like 16 years? Not possible at all. Whoever discuss Bhagavatam, they can see when Devaki and Gosudev request him, pray him again and again, be like a mountain child, then you can protect. Then Krishna became like his newborn baby. Gurudev gave another argument. There are so many mothers are here, they have their children. When children took birth from mother womb, then there is some connection with the mother and the baby with umbilical cord. But in Devaki's death, there is no sign at all. But in Gokul, Yashoda Maiya had a child, Krishna, and after that, the child and the daughter. So there is some connection with Krishna and mother Yashoda's umbilical cord. And after that, Nanda had a very big festival. He donated so many sesame seeds, covered gold and so many gold and so many cows. After that, Krishna killed Putana. She had about 10,000 elephant power in her. And Krishna, she wanted to kill Krishna with strong poison with breast milk. Unless until mother will not child, he had a child, breast milk will not come down. So Putana has no child, so there is not possible of breast milk. She feeds her breast with strong poison. Krishna sucked off poison along with her life air and give her like motherly destination. Moreover, Krishna could kill demon Aghasur, Bakasur, and Krishna lifted Giridhar Govardhan about 7 days. Whoever visited India Govardhan, they can understand how big Govardhan is, how it is possible to lift Govardhan for 7 days. Although some atheist person, they thought that Krishna is Son Bhagavan, but their idea is completely wrong. So, being a common person, not possible to do so many strange things. Now, we are coming another pastime. In hot summer day, Krishna was raising cows along with his sakha seated by Baladev Prabhu and going one forest to another forest. And the nature of cows, when they see Indra, they want to get their more, even they will go more. By this way, cows are going, and after that, Krishna and his sakhas, they are spraying each other, and their mother sends some breakfast, they are about to take. In the meantime, they found there is no cows at all. They became surprised, oh my goodness, where are cows? When they go back, then our parents will chastise us. Then they told to Krishna, and what Krishna told, we are describing now. All the Gurudev is traveling all over the world. Only Gurudev has chance to speak in Hindi, in Singapore, in US, in Houston, and Fiji. All over the world we have to speak English. So Gurudev, we have to like here to speak in Hindi. Hare Krishna.
Gaye. लाखों लाखों गायें जब देखा चरवाहे तो लोग तो खाने के लिए बैठ गए हैं तो अब चरवाहे तो साथ में ग्वाल बाल है नहीं एक बन से दूसरे बन में होते होते जमुना के बिहड़ बन में, जहां पर मुंच के पौधे होते हैं, हाथी भी उसमें डूब जाए इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं, चारों तरफ बालू बालू ही, गाय उसके अंदर में प्रवेश कर गई, ऊपर से चिल चिलाती हुई धूप, नीचे में बालू तवे के समान में जल रहा है, गाय प्यास से छटपट छटपट करने लग गई। अब तो थोड़ी देर के बाद में सखाओं ने देखा जी गाय कहां गई, उन्होंने कृष्ण से भी कुछ नहीं पूछा और वे गायों को पीछे पीछे खोजते खोजते, कैसे खोजे, रेती में उनके चरणों के चिन्ह डूब गए हैं, आ गए हैं, और जहां पर घासें खाई है उसके टुकड़े पड़े हुए हैं उसी को देख देख करके उनके पीछे पीछे चले। गाय तो छटपट छटपट कर रही थी, निकलने का रास्ता नहीं, और इधर चरवाहे भी ढूंढते ढूंढते उसी वन में पहुंच गए, और ये भी प्यास से छटपट छटपट करने लगे। इतने में कंस का कोई एक दूत राक्षस उस वन में जंगल में जो कि सूखी हुई घासें थी मुंज की, आग लगा दी। आग लगाने के साथ साथ में जहां आग लगती है तो वहां की ठंडी हवा ऊपर गर्म होकर के चली जाती है, दूसरे तरफ से हवा चलती है तो वहां पर आंधी चलने लगती है, उस आंधी में चिंगारियां यहां से वहां उड़ करके सारे वन में छा गई, चारों तरफ में जलने लग गया। अब तो गाय और सखा लोग बड़ी विपत्ति में पड़े। उस समय में हा कृष्ण हा बलदेव, आप बड़े बलवान हैं, हमारी रक्षा करें, हाथ उठाकर बड़े जोर जोर से पुकारने लगे। जब पुकारने लगे तो बस कृष्ण एक सेकंड के अंदर में वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने देखा कि चारों तरफ से आग लगी हुई है, बचने का कोई रास्ता नहीं है, सखा लोग छटपटा रहे हैं, तो उन्होंने सखाओं से कहा, ओ मेरे सखो गोपों, आंख बंद करो एक सेकंड के लिए। उन्होंने ऐसा ही किया। कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा कि आंखें बंद कर लो, इसलिए कहा एक समय मिट्टी खाई थी तो सखाओं ने यशोदा मैया से कह दिया तो वो उनको दंड देने लगे। सोचा जैसे यदि ये सखा लोग जाकर के कह देंगे जे आग खा लिया तो मेरी मैया मुझे मारेगी, देखो कृष्ण कौन है, अखिल कोटि ब्रह्मांड विश्वों के नायक है, एक क्षण में ही अपनी दृष्टि से ही सबका, समस्त विश्व का सृजन कर सकते हैं, ध्वंस करके नई सृष्टि कर सकते हैं। ऐसे कृष्ण उन्होंने इस यशोदा मैया से डरते हैं, जब लठिया लेकर के उस विश्व ब्रह्मांड के नायक को भी मारू, कदे मारू, रोने लगते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, नकली आंसू नहीं, बनावटी नहीं, सचमुच में ही रोने लगते हैं। प्रेम का ऐसा ही स्वभाव है कि जोग माया के प्रभाव से कृष्ण अपनी भगवत्ता को ब्रज में भूल जाते हैं, और यशोदा मैया नंद बाबा और सखा लोग भी परिपूर्ण कृष्ण भगवान है भूल जाते हैं। देवकी, वसुदेव जी, मथुरा के लोग और विश्व के लोग कृष्ण को भगवान मानेंगे, वो भगवान नहीं मानते। जो हमारा बेटा है अभी करवट बदलने नहीं जानता, खाने नहीं जानते हैं, इसलिए कृष्ण को उस तरह से प्यार करते हैं, वसुदेव देव की इत्यादि नहीं कर सकते।
हरे कृष्ण। सो व्हेन काउ वाज ग्रेजिंग एंड दे एंटर्ड वन अफ अनदर फॉरेस्ट एंड देयर इज वन फॉरेस्ट फुल ऑफ मुंजा। मुंजा मींस वन वेरी टॉल टॉल ग्रास लाइक बैम्बू एंड इट वाज कंप्लीटली ड्राई। इट इज सो टॉल इवन एलिफेंट पास थ्रू, नन कैन सी द एलिफेंट इज देयर। When Sakal saw there is no cow at all, they without taking permission or discussing with Krishna and Baladev, they went out for searching. How they can search the cows? When cow was grazing grasses, some grass here and there, and the print of their hooves here and there, seeing these Sakals entered there. It was hot summer day, even not only that, moreover midday. Same here, sand and sand was so hot, and on the top of head, the midday sun was raising its very hot rays, so hot on the top and hot on the bottom. Even air became very hot. In the meantime, one demon, followers of Kamsa, he thought, oh, this is a golden chance for me. Krishna must be here with Sakals and cows. If I put fire, then they all will die. Because my king Maharaj Kamsa is very worried for Krishna and Baladev. He tried at his level best to kill Krishna, sending Putana, Aghasur, Bakasur. He never successful. So if I do so, then I can get very big reward from Maharaj Kamsa. So he put fire. With all the dry grasses, very tall tall grass, in a few seconds, the fire scattered everywhere. Because while there is fire, then the air became hot and went up from the each and every corner. Air came to fill up that place. We have heard from news every year in America, in Florida, they got forest fire and fire spread so fast, very hard to stop them. In same way, this fire is spreading here and there. And all Sakals and all cows, they became very thirsty and in big danger. Then Sakals began to call out, "Oh Krishna, oh Baladev, you are very powerful. Save us, we are in great danger. Save us, save us. If someone call out for Krishna from the core of heart, Krishna is not far from ourselves. He will appear there immediately." Just like you know, when Draupadi call out for Krishna, when Dushasan want to take her sand, then she call out Krishna, "Hey Govinda, Rava Sarana, Tu Jivana Hari." As soon as she call out, Krishna was in Dharaka, appeared immediate there. In same way, when Sakals come out from the core of their heart, and Krishna appeared there. And Krishna told, "Oh my dear Sakals, please close your eyes." Now Gurudev gave an argument, is given by our commentators of Srimad Bhagavatam, read by Sanatana Goswami, Sridhar Swami Pad, Vishnu Thakur, Jeev Goswami Pad, Jeev Raghavan, etc. Why Krishna asked to close their eyes? Because although Krishna is Supreme Person of Godhead, but he has fear for Mother Yashoda. Once in childhood, Krishna ate dog, and also comes complaint to Mother Yashoda. Then Krishna has taken claim, then Mother Yashoda chastised him very badly. Krishna said, "Oh my goodness, if I today put fire and Sakha will see, then they will complain to my mother, and Mother chastised him very badly." So, another thing, if Sakha will see that Krishna is eating fire, then Sakha may die. So thinking this, Krishna asked to close their eyes. Because although Krishna is Swayam Bhagavan, Mother Devaki and Vasudev, they may think him Swayam Bhagavan. But in broad, in Sakhas, or Mother Yashoda Nanda Baba, or mother-in-law gopis, and father-in-law gopis, and sakhis, they never think Krishna is Swayam Bhagavan. Why? The influence of Jagmaya. Krishna forget himself that he is Swayam Bhagavan, and all Brajavasis they forget that Krishna is Swayam Bhagavan. Mother just thought Krishna is my small baby. Even he does not know how to change his side, he don't know how to eat. If I feed him, then he will be happy. If I change his side, then he can change side. By this way, all Brajavasis consider Krishna as their own keep and keep, not send Bhagavan. Hare Krishna.
कृष्ण ने जब कहा प्यारे सखाओं आंख बंद करो और कृष्ण की बात मानकर एक सेकंड के लिए आंखें बंद कर दी और कृष्ण ने ऐसे किया और सारी आंख ऐसे पी लिया जो जैसे शीतल पानी पीने से होता है। बोले जी आंख खोलो, जो ही आंख खोला खूब ध्यान दे करके सुनो बेटियों कि इधर उधर चित्त मत ले जाओ, एक आज आध घंटे के लिए आया हूं कुछ बोल रहा हूं, बातचीत करने के लिए बहुत समय मिलेगा और ऐसी बातें कहूंगा जो यदि पालन करेगी तो जीवन में सुखी रह सके, सभी ध्यान से सुने। तो जब आंखें खोली सखाओं ने देखा जिस भांडीर बन के नीचे हम बैठे खा रहे थे, हम वहीं पर बेस आनंद के साथ में वृक्ष की छाया में बैठे हैं और भोजन कर रहे हैं और गायों ने देखा कि गाय क्या कर रही उसी शीतल छाया में उसी पेड़ की पट वृक्ष की, वो भी बैठ करके पागु कर रही है, मानो कुछ हुआ ही नहीं। इसमें एक रहस्य छिपा है। लीला कथा तो कृष्ण ने नहीं की, किंतु व्यर्थ ही कोई लीला नहीं करते हैं, उसके अंदर में कुछ ना कुछ भाव छिपा होता है। गो माने गायों को चलाते हैं, वो गो माने गाय, और दूसरा एक अर्थ होता है गो मने इंद्रिय। हमारे 11 इंद्रियां हैं, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा और ये त्वचा। इससे हम अनुभव करते हैं कि ये शीतल है या गर्म है या कैसा है। नाक से हम सुगंध लेते हैं, दुर्गंध लेते हैं। आंखों से हम देखते हैं कि कौन कहां क्या है। इस प्रकार से इन 5 इंद्रियों के द्वारा 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, इनसे हम ज्ञान अर्जन करते हैं। और 5 हैं हाथ पैर जिह्वा और उपस्थ इत्यादि, ये सब ये कर्म इंद्रियां, इसे हम कर्म करते हैं। ये इंद्रियां बड़ी चंचल है, मन कितना चंचल है आप लोग समझते होंगे, एक सेकंड भी चुपचाप नहीं बैठ सकता, कहीं ना कहीं घूमता रहेगा, स्वप्न में भी घूमता रहता है और हमने इस जन्म में दूसरे जन्म में जो किया है नहीं किया भी है उसको ये चिंतन करता है। यदि किसी ने मनयो मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्ष, जिसने मन को कंट्रोल कर दिया और भगवान की आराधना उससे किया तो वो भगवान को पा जाएगा। जिसने मन को कंट्रोल नहीं किया वो खुला हुआ उसके लिए नरक का द्वार है। इसलिए मन को कंट्रोल करना बड़ा भारी कठिन है। ये मन यदि भगवान को समर्पित नहीं होता, परम तत्वज्ञ रसिक गुरु से यदि वो दीक्षा हरिनाम और भजन का तरीका नहीं पाता तो भटक जाता है, बस संसार के चीजों में ही, विषयों में, स्त्री पुत्र बाल बच्चों में बस आसक्त हो जाता है और आसक्त होने से ही जैसे मरता है और उसकी आसक्ति फिर वैसे ही जन्म लेता है। भारतवर्ष में एक भरत नाम के राजा थे जिनके नाम के ऊपर में भारत नाम पड़ा है, वो मरते समय हिरण की चिंता करते करते हिरण हो गए। इसलिए मरते समय केवल भगवान का चिंतन हो, कृष्ण का राम का चिंतन हो, दूसरा कोई चिंतन करने से फिर वही जन्म होगा। तो इसलिए कहते हैं जैसे ये कैसे तत्व तो ज्ञान होगा, बिनु गुरु भव निधि तरै न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। जो तत्वविद रसिक भगवत भक्त हो, ऐसे संसार से अनासक्त, कृष्ण में प्रेम हो, राम में प्रेम हो, ऐसे यदि गुरु हो तो उनसे हरि नाम दीक्षा लेकर के भजन में अग्रसर होना चाहिए। भजन में दो प्रकार का भजन होता है, एक लौकिक, एक पारमार्थिक अथवा पारलौकिक। अभी ठाकुर जी के सामने आए हैं, राम सीता जी को प्रणाम किया, कृष्ण राधा जी को प्रणाम किया, फिर शंकर पार्वती जी को प्रणाम किया,
लक्ष्मी नारायण
को प्रणाम। भाई आपको किसके प्रति आपको प्रीति है, आपका इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट देव सभी हैं। यदि कोई पतिव्रता स्त्री से पूछे ये तुम्हारे पति कौन है, ये नहीं कहेगी वो भी मेरे पति है, ये भी। इसलिए आराध्य देव कोई एक होना चाहिए, दो नहीं। यद्यपि राम और कृष्ण एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण ही राम के रूप में आए हैं, तो भी सीता जी राम ही के साथ रहेंगी, कृष्ण के साथ नहीं। राधा जी कृष्ण के ही साथ में रहेंगी, पार्वती जी शिव जी के ही साथ रहेंगी। इसलिए एक ही उपास्य देव होना चाहिए। और अभी भी जो हम उपासना करते हैं आते हैं फल लेकर के आते हैं, ठाकुर जी को समर्पण करते हैं, फूल की माला लेते हैं, प्रसाद लाते हैं, चढ़ाते हैं, कहते हैं ऐसे नहीं, कहते हैं हे ठाकुर जी हमारा बेटा, हमारे बेटे को अच्छी आमदनी हो, उसको पुत्र नहीं हुआ है, एक पुत्र हो, सुखी शांति से रहे, हमारे स्वामी का बिजनेस चल नहीं रहा, ये बिजनेस जरा ठीक हो जाए। तरह तरह की कामनाएं होती हैं। यदि कामना के साथ में भगवान का भजन किया गया और ये ठीक नहीं रहा कि हमारे इष्ट देव कौन है, तो भजन शुद्ध नहीं होता। ये लौकिक ही है। कह शिव जी के दरबार में और चौकठा दबाते हैं, हे शिव जी एक रुपए का बतासा चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी यदि मेरा लड़का पास हो गया। ये भक्ति तक्ति कुछ नहीं है, लौकिक लौकिकता है। इसलिए ऐसा करने से भक्ति नहीं होती। भक्ति कैसे होता है, होती है सदगुरु जो पहले बतलाया उसका चरणाश्रय करके उसे भजन सीखे, और श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शनम, भगवान के नाम रूप गुण और लीला इनको गुरु वैष्णव के मुख से सुने और फिर उसका कीर्तन करें, उसका चिंतन करें। इस तरह से ये नौधा भक्ति होती है। और सब नौधा भक्ति में भी एक श्रेष्ठ है हरिनाम संकीर्तन। और उस नामों में भी कलयुग में उपास्य नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। भगवान ने अपनी सारी शक्ति सारी दया सारे गुणों को नाम में भर दिए। इसलिए कृष्ण जो कर सकते हैं इनके नाम भी कर सकते हैं। ये तो हुई शुद्ध भक्ति। और इस शुद्ध भक्ति से कृष्ण की प्राप्ति होती है या राम की प्राप्ति होती है।
Hare Krishna. So, Krishna asked the Sakas to close his eyes. As soon as the Sakas close their eyes, then Krishna take down fire and ask them to open their eyes again. When the eyes are opened, they found them under the Bhandir Bhat, means the very big, large banyan tree. They are sitting there, and before they are eating, they found them there eating, and all cows, they are sitting under the shade of the banyan tree, and they are chewing their chew. How is possible? Because Krishna is saying, Bhagavan, by his inconceivable potency, he did so. After that, Gurudev addressed all audience and told, my dear darling daughters, you have enough time to talk, going to your home and other place. I came here for one day and half an hour. Please listen carefully. So, Gurudev told, mind is very fickle, very restless. Now here, after 1 second, is going there, he could not control it. So, not only that, even Arjun told to Krishna, saying, Krishna Bhagavan, the Chanchalahi Mana Krishna Pramathi Balavat Vidam. Oh Krishna, my mind is very fickle, very restless, more than powerful than an elephant. So in India they are told, Manbara Chanchal Hai Kaise Tera Bhajan Karu, my mind is very fickle, how I can do your bhajan? So be careful and listen carefully. And if you take initiation from a bona fide Gurudev and you convert your mind to your bhajan, then your life will be successful and you can get peace and tranquility of your mind. So what a symptom of Guru? He must be qualified of all ethics and realize so and detach from this material world. Then Gurudev told, bhajan is two types. Sorry, one more thing Gurudev told. About go. Go means the Sanskrit word. According to Sanskrit, they have so many meanings in Sanskrit dictionary headed by Amarkosh and Medinikos. Go means cow, go means senses, go means bed, go means other mother, etc. So our cow has, cow, go means senses. We have 11 senses, 10 for acquiring knowledge, 10 for walking and 1 the king of all senses. So, Krishna did first time, there is some mysterious behind this. What is that? That cow means indriya, the senses. If we engage our senses in bhajan, then our life will be successful. Otherwise, we will make chaos go here and there. So, we are doing bhajan. So, what is the process of bhajan? Through the probably two types. One is laukiki, means material, and paramarthika means spiritual. Just like, if you ask anyone who is your Aradha means responsibility, oh, all are here, Lord Ram and Sita Devi, Lord Krishna and Radha, and Lakshmi Narayan, Shiva and Parvati, all are my Aradha Deva responsibility. It is not true. Just like, if you ask any chess lady, who is your husband, she will not tell, everyone is my husband. Only she has one husband. In same way, Aradha and responsibility must be one. Although Bhagavan Krishna and Lord Ram and Narayan theoretically are same, but there is some speciality. Mother Sita Devi never knew the Lord Krishna, and Radhaji never knew the Ram. Parvati never knew the Krishna, always with Mahadevji. We are bringing some fruits and flowers, offering to deity, and telling, oh, my husband's business is running not nicely, business must be good, my son is very ill, make him cure. Sometime we have seen in India so many coming to the temple of Lord Shivji and offering some sweet and massaging his Chaukata means the front wood is keeping a chaukata in Hindi. And told my son must be cured. I've seen India in so many, then they became very upset. So how we can do bhajan spiritually? As we told Guru, they call the symptom of bona fide Guru. He must be expert in all scripture and detached from this material world and realize soul. If you do bhajan, then you do spiritual bhajan. How to do that? They mention Srimad Bhagavatam, Savaram, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Sarkadasma, Atmanivedanam, Itipul Sarkita, Vishnu, Bhaktisthana, Lakhana, Preet Bhagavatam, Dhatam, Narutam, Uttamam. So, Pallam Maharaj, Sarankar Bhagavatam told this. Moreover, from this is called nine limbs of bhakti. After this, more shorter in five limbs, more shorter three, and more only one, Hariram Sankirtan. Especially in Kali Yuga, Kali Yuga Kevala Nama Adhara, Sumira Sumira Garutara Ipada. In Kali Yuga, Krishna name is Mahamantra is the process of doing bhajan. Krishna being in Sankh Bhagavan, in 1 second can create millions of universes, then only second again create. So if you do bhajan under guidance of Bonafide Gurudev, then proper bhajan and life will be successful. Hare Krishna.
हमारे शास्त्रों में शुद्ध भक्ति या परमार्थिक भक्ति किसे कहा गया है इसे समझने की चेष्टा करेंगे। अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकुल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। यदि तन मन वचन और इससे भी अति भावना जितनी प्रकार की चेष्टाएं हो सकती हैं वो सब चेष्टाएं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हों, अपने लिए कोई क्रिया न हो, और वो भी अनु वैष्णव के गुरु के अनुगत्य में हो, और वो भी तैल धारावत अविच्छिन्न गति से हो। आज किया कल नहीं किया ऐसा नहीं, अभी कर रहे हैं अब थोड़ी देर के बाद नहीं करेंगे ऐसे नहीं। जैसे नदी का प्रवाह, गंगा का प्रवाह कहीं बंद नहीं होता, ऐसे कंटिन्यूअस रूप में उसको करना है। ये हुआ भक्ति का डिफिनेशन। तन से, मन से, वचन से, इंद्रियों से, भावना से जितनी प्रकार की चेष्टाएं हो सकती हैं, बस कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। किंतु इसमें भी एक बात है, ये उत्तम भक्ति नहीं होगी। वो उत्तम भक्ति कब होगी? जब संसार में जो कुछ भी करते हैं अपने लिए न करें, सभी कृष्ण के लिए। अन्नाभिलाषिता सुन, कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त, कृष्ण को प्रसन्न करने के अतिरिक्त, कृष्ण के परिकरों को, भक्तों को प्रसन्न के अतिरिक्त और किसी कार्य से नहीं। जैसे ध्रुव जी ने भक्ति तो किया भगवान की और भगवान का दर्शन भी पा गए नारायण जी की, और उनको 36,000 वर्ष का निष्कंटक राज्य भी मिल गया और ध्रुव लोक भी उनको मिल गया। किंतु ये सकाम भक्ति है। राज्य किसके लिए मांगा? अपने लिए। इसलिए ये भक्ति शुद्ध नहीं हुई। किंतु प्रहलाद महाराज की भक्ति शुद्ध है, किंतु वो ज्ञानी भक्त हैं। उनको भगवान के प्रति ये भावना होती है, भगवान सर्वत्र हैं, सब में भगवान है और भगवान में सभी हैं, सर्वत्र भगवान। किंतु कोई सेवा नहीं कर सकते। क्यों? नृसिंह जी आए, प्रहलाद महाराज जी ने क्या सेवा की? उनका पैर तो थकता नहीं तो पैर दबाएंगे, भूख प्यास तो लगती नहीं उनके भगवान को, जो उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, इसलिए कोई सेवा नहीं कर, अस्ता स्तुति कर देते हैं बस। उनसे महाराज अम्बरीश शुद्ध भक्त हैं, वो अपने भगवान जी का, ठाकुर जी का मंदिर कोई पुजारी नहीं रखते, अपने आप महाराज हो करके भी अपने आप झाड़ू बहारू देते हैं, ठाकुर जी का लिए भोग देते हैं, मंदिर साफ करते हैं, हरी कथा सुनते हैं, दूसरों से भगवान की कथा कहते हैं, सारे इंद्रियों को भगवान में लगाया। इनसे भी प्रेमी भक्त हनुमान जी है, दिन रात भगवान की सेवा में एकदम साक्षात रूप में राम की सेवा करते हैं। राम को और श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी को कंधे पर बैठा लेते हैं, समुद्र को पार कर लिया, सीता जी को पता लगा लिया और राम के पास में आ गए। बिना राम के एक सेकंड नहीं रह सकते, ऐसे हनुमान जी हैं प्रिय। उनसे भी श्रेष्ठ पांडव लोग हैं। हनुमान जी अपना जूठा राम को नहीं दे सकते, अंक में आलिंगन नहीं कर सकते, एक सैया पर सो नहीं सकते। हनुमान जी में कुछ सेवा करने पर भी ये सब नहीं कर सकते। अर्जुन को देखो, अपने भक्त का रथ चलाते हैं, इधर इधर रथ ले चलो, इधर रथ ले चलो, उधर ले जाते हैं। केवल यही नहीं, कृष्ण के घोड़ों को पैर दबाते हैं, उनकी सेवा करते हैं और अपनी बहन सुभद्रा जी को कृष्ण से भी अर्जुन से विवाह कर दिया, उनके साले अपने आप बन गए और उनका आदेश पालन करते हैं, युधिष्ठिर महाराज जी को प्रणाम करते हैं। ये देखो, गले में अंक में लगाते हैं, एक सैया पर सोते हैं, भोजन करते हैं एक थाल में, अपना जूठा भी दे देंगे। किंतु पांडवों में है, जब विश्वरूप देखा अर्जुन ने, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, हमने आपको सखा कहा, यह तो बड़ा अन्याय कहा, अब से नहीं कहूंगा, अब से आपको रस सारथी नहीं बनाऊंगा, आपको मैं साला नहीं समझता, आप विश्व ब्रह्मांड के पालक हैं। इनसे भी श्रेष्ठ कौन है? यादव लोग और उनमें उद्धव बहुत श्रेष्ठ है, दिन रात छाया की भांति रहते हैं, उनके मंत्री हैं, सखा हैं, उनके सेनापति हैं, सब कुछ है। और ये उद्धव जी क्या करते हैं? कहते हैं, असामहो चरण रे दुसामहम श्याम वृंदावने किम गुल्मलताओ सधी नाम जन दुष्ट जन स्वजन आर्य पथन चहित्वा भेजे मुकुंद पदमें श्रुति भी। उद्धव जी थे, ओहो, या मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी कि वृंदावन में कहीं एक घास गुल्म लता हो जाऊं और गोपियां उसके ऊपर में चले तो उनके चरणों की धूली लग जाए तो हम कृतार्थ हो जाए। उद्धव ब्रज में गए किंतु सौभाग्य इतना नहीं था कि ब्रज में घास भी हो करके जाए। और अंत में कहते हैं, वंदे नंदी ब्रज स्त्री नाम पादरेणु हरि कथोद्गीत भुवनाथ। मैं नंद बाबा के घर के जो गोपियां हैं उनकी चरणों की एक धूली तय होना चाहता हूं, ऐसी प्रार्थना करते। इसलिए गोपियां कृष्ण की सबसे प्राण प्रियतमा, सबसे सेवा करने वाली यदि कोई है तो उसकी ध्वजा गोपियां हैं, गोपियों से पढ़ करके नहीं। ठीक है, ठीक है, अब थोड़ा ही थोड़ा सा अंत में ये मैं कहना चाहता हूं, इस भक्ति का उदाहरण जरा समझने के लिए ये समझिए, अयोध्या में आइए, राम सीता और लक्ष्मण को लेकर के वनवास के लिए चले गए हैं और चित्रकूट में हैं। भरत जी ने निहाल से आए, माता को सदा के लिए त्याग कर दिया और सारी सेनाओं को लेकर के, मंत्रियों को, ब्राह्मणों को लेकर के, वशिष्ठ जी को लेकर, भैया को मनाने के लिए गए। यार बड़े भाई हैं, आप ही को राज्य लेना होगा, मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। ये लोग भी चित्रकूट में पहुंचे। कौशल्या मैया कैकई भी गई और सुमित्रा जी भी गई, महर्षि वशिष्ठ वाल्मीकि ये सब लोग वहां पर गए। भट्ट जी ने सबसे पहले गुरु जी को पकड़ा, गुरु जी आप चाहे यदि राम को आदेश दे दे तो अभी लौट जाएंगे और आज ग्रहण करेंगे, आप उनसे कहिए। उन्होंने कहा जब बेटा मुझे तो तुम्हारे प्रति सहानुभूति है किंतु मैं ये कह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो धर्मपथ में है, अपने पिता का आज्ञा मान करके चल रहा है, मैं कैसे कहूं? तो मैं क्या गलती में हूं पथ पर? नहीं, तुम ठीक हो, तुम अपने रास्ते में ठीक हो, वो अपने रास्ते में, मैं कैसे कहूंगा? कौशल्या मैया के हाथ में राम तुम्हारा पुत्र है, आप कृपा करके राम से कहो आज अयोध्या लौट जाए और राज सिंहासन धारण करे, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। कौशल्या ने कहा बेटा मैं कैसे कह सकता, मुझे तो ये इच्छा है कि वो लौट जाए, किंतु देखो राम धर्म का एक हिमालय जैसा है, क्या हिमालय जैसा है, समुद्र में डूब जाएगा, प्रशांत सागर में, किंतु इधर से उधर नहीं हो सकता, टस से मस नहीं होगा। और तुम्हारा प्रेम इतना था है जो उसमें राम डूब जाएंगे, किंतु राम भी टसमस नहीं होगा, प्रेम में डूब भी जाएगा, बेटा मैं कैसे कहूं? सुनैना जी के पास गए, सीता की माता जी, उनसे भी यही निवेदन किया, राम के साथ में सीता जी वनवास में जा रही हैं, इसलिए उनको कष्ट होगा, आप कहिए लौट जाए। उन्होंने कहा मैं अपने पतिदेव से कहूंगी। और उसी समय में महाराज जनक वहां पर उपस्थित हुए, उसमें बात हुई कि कल सभा बैठेगी और इसमें विचार होगा ये क्या करना चाहिए। दूसरे दिन सभा हुई, एक तरफ में राम लक्ष्मण बैठे, ऋषि लोग बैठे, एक तरफ में जनकपुर के लोग बैठे, एक तरफ में माताएं बैठी, एक तरफ में वशिष्ठ जी ऋषियों के साथ में बैठे और महाराज जनक एक तरफ में बैठे। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज जनक आप ठीक समय पर आए हैं, अयोध्या में अयोध्या का राज्य एक नाम में जैसे डगमग इधर उधर कर रहा है, किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही, प्रेम भरत अपने प्रेम में एकदम दृढ़ है, नहीं तो मारा जाएगा, और इधर राम भी अपने धर्म से विचलित नहीं हो, क्या किया जाएगा आप कृपा करके बतलाइए। महाराज जनक ने कहा जैसे हमारे गुरुजी प्रेरणा करेंगे, उनके गुरुजी शंकर जी हैं, जैसे गुरुजी हमारा कहेंगे हम उसका प्रति वही हम आप लोगों से कहेंगे। राम की तरफ में देखा, राम हमारे आदेश को पाल मानेगा। उन्होंने कहा जरूर आप जैसा कहते हैं, वर्ष से देखा हम जो निर्णय करेंगे मानेगा, जरूर मानेंगे, आप पिता भी है गुरु भी है। तब उन्होंने शंकर जी का ध्यान किया और कहा देखो भारत की जीत हुई। सब लोग एकदम सुनकर के बड़े आनंद हुए, ये सब तो अयोध्या लौट आया करके ले जाएंगे, भारत की जीत हुई, किंतु भारत की जीत हुई ये बात ठीक है, किंतु प्रेम की भी एक रीति होती है, प्रेम ऐसा नहीं होता, उसमें साधक को जो प्रेम करता है उसको ये देखना चाहिए कि हमारा आराध्य देव सुखी है कि नहीं। यदि फर्त है, राम को अयोध्या ले जाना चाहता है, सिंहासन दे करके बड़ा खुश होगा, किंतु उससे ये देखो भरत राम क्या चाहते हैं, नहीं तो भक्ति नहीं होगी। इसलिए तुम्हारी विजय होने पर भी तुम विचार करो, राम से पूछो वो कैसे सुखी होंगे। अपने इष्ट देव को सुखी कराना है, यही है भक्ति का मूल लक्षण। भरत जी महाराज जनक के सामने में दंडवत प्रणाम किया, आपने हमारी आंखें खोल दी, अब तक मैं समझता था मैं जैसा सुखी रखना चाहता हूं वैसे सुखी रहे, कि मैंने राम सुखी हो ये तो मैंने चिंता की नहीं। राम के पास में गए, चरणों में गिर करके बोले, भैया आप क्या चाहते हैं, किस में सुखी हैं? उन्होंने कहा जे तो जनक जी ने बतला दिया तुम्हारी जीत हुई है, इसलिए मैंने राज सिंहासन ले लिया, किंतु हमारे प्रतिनिधि के रूप में 14 वर्ष तक तुम इसके प्रतिनिधि होकर के राज्य का संभालो, वो राज्य मेरा है, मैं आकर के ले लूंगा। बस भरत जी ने उनकी खड़ाऊ ली, सिर पर रखा, लौट गए। ये जो अंत में जो भरत जी ने सीखा, राम प्रसन्न है कि नहीं, भगवान प्रसन्न है कि नहीं हमारी इच्छा के द्वारा, तो भी यही भक्ति होगी। इसलिए ऐसी भक्ति होनी चाहिए, यही उत्तमा भक्ति है, पारमार्थिक भक्ति है। मैं यही कह करके अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। आप लोग हमारे पीछे कीर्तन कीजिए।